मेरी सहेलियों नमस्कार, और मैं स्मिता माथुर और मेरी इस चैनल मालती के फूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मेरी कहानी का नाम है वो लड़की। और वो लड़की और इस मालती के फूलों का जो गुलाबी रंग होता है और उसमें जो थोड़ा सफ़ेद रंग होता है, थोड़ा गुलाबी रंग होता है, बस आपको वो लड़की में ये दोनों ही रंग दिखाई देंगे। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी वो लड़की। वो लाल गालों वाली लड़की, फूले फूले लाल लाल गाल, जब वो तेज जाड़ों में दरवाजे पर हल्की सी धूप में खड़ी होती, उसके हल्के गुलाबी गाल धूप की तेजी से एकदम गुलाब जैसे लाल हो जाते, गोरा चिट्टा रंग, तीखी नाक और बड़ी बड़ी काली आंखें। हमारी क्लास की वो सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैं उसके गालों को बड़ी लालची दृष्टि से देखती, जिसमें कुछ कुछ ईर्ष्या का भाव भी था। मेरा पिलाई लिए गोरा रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे गाल ऐसे लाल क्यों नहीं हो जाते, मैं हमेशा यही सोचती। उसकी इसी खूबसूरती के कारण वो रामायण के केवट प्रकरण के मंचन में सीता बनी थी। इतनी लड़कियों में उसको सेलेक्ट किया था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जब लाल साड़ी पहनकर माथे पर छोटी छोटी लाल सफेद बिंदियां लगाकर, जैसे दुल्हन को लगाते हैं, और अधरों पर लाल लिपस्टिक लगाकर उसे सीता जी के समान सजाया गया था, ऐसा लगा था जैसे साक्षात सीता जी ही धरती पर उतर आई हूं। एक लंबी पतली सांवली किंतु स्मार्ट लड़की गीता को रामचंद्र जी बनाया गया था। जब सांवले सलोने राम सीता का अंगूठियों से जड़ित कोमल हाथ लेकर काल्पनिक नाव में चढ़ते हैं, जैसे रामायण के राम सीता ही धरती पर उतर आए थे, वही काट के एक टब में केवट बनी लड़की ने उनके पैर पखारे थे। उस छोटी सी जगह में वो लड़कियों का एक सरकारी स्कूल था, 6ठी से 12वीं तक। मैरून स्कर्ट और सफेद ब्लाउज। उस छोटे से पिछड़े शहर में लड़कियां अक्सर घर की सिली फुअर सी स्कर्ट और बाहर निकले सफेद मटमैले ब्लाउज पहनकर आती थी। पतली दुबली लड़कियां अक्सर पैरों में प्लास्टिक के चप्पलें और बालों की दो पतली पतली चोटियां बनाकर आती। चलने में वो चप्पल को घिस घिस कर चलती। अधिकतर लड़कियां निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवारों की थीं, अतः कॉपी किताबें भी सबके पास पूरी नहीं होती थीं। कपड़े के झोले में और कॉपी किताबें रख के लाते थे। इसीलिए अभिजात वर्ग से आई हम कुछ लड़कियां अलग ही दिखती थीं। प्रेस किए हुए प्लेटदार स्कर्ट, वाइट कॉलर वाला चमकता ब्लाउज और चमकते जूते मोजे। मैं सीता बनी इरा, राम बनी गीता और लक्ष्मण बनी नीलिमा उन्हीं लड़कियों में से थे, जिनके पिता डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर थे। कुछ ही लड़कियां थीं जिनको इंग्लिश पढ़ने लिखनी आती थी, बाकी सबकी अंग्रेजी शिक्षा तो 6ठी से ही आरंभ होती थी। इसी कारण हमें कक्षा में कुछ अलग ही सम्मान मिलता। लक्ष्मण बनी नीलिमा का रंग गेहुआ था, लेकिन 13-14 वर्ष की होते होते उसके चेहरे पर अद्भुत निखार आ गया था। गेहुआ रंग सुनहरे रंग में बदल गया था। गोल कटे हुए कानों तक आते बाल और बड़ी बड़ी काली आंखों में पलकों की छाया सी तैरती रहती है। उसके दांत ऐसे सुंदर थे जैसे मोती जड़े हों। बचपन की उन सहेलियों का इतना अधिक प्रभाव है कि आज प्रौढ़ावस्था की सीढ़ियों पर चढ़कर भी मैं उन मधुर प्यारी लड़कियों को नहीं भूल पाई हूँ। ये बचपन के फ्रेंड्स हैं, आप लोग की भी होंगी जो आपको याद होंगी। और वो लड़की हाजरा, दुबली पतली और एक चोटी बनाए हुए, जहाँ हम सब स्कर्ट ब्लाउज पहनते, वो मैरून कलर का कुर्ता, सफ़ेद सलवार और सफ़ेद दुपट्टा पहनती, बड़े कायदे से दुपट्टे को फोल्ड करके। 11वीं 12वीं की दीदी लोग भी सलवार कुर्ता पहन कर ही आती थी, हम लोग तो समय 6 में थे, 6-7 में। जहाँ उस समय हम लड़कियों को घर का कुछ भी काम नहीं आता था, हाजरा अपना टिफिन खुद बनाकर लाती थी। बुनाई तो वो ऐसे फटाफट करती कि देखते रह जाओ, क्लास में बैठ के बुनती रहती थी फटफट फटफट। थोड़ा सा हाथ नीचे रखती थी जिससे मैडम को ना दिखाई दे। सिलाई और कढ़ाई में भी उसका कोई जवाब नहीं था। एक बार हम सब लड़कियां उसके घर गए थे। घर के छोटे से आंगन में बांध की खाट पर बैठकर ही हमने सब्जी रोटी खाई थी। सुना था रोटी भी वो उल्टे तवे पर बनाते थे। मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार, और ना जाने ऐसी कितनी ही लड़कियां मेरे मन के कोने में झांकने लगी हैं। वो गीता सिंह जिसके पापा मजिस्ट्रेट थे और वो बाहर से ट्रांसफर होकर आई थी। मेरे हर एग्जाम में प्रथम आने के क्रम को उसी ने तोड़ा था और 7वीं 8वीं में वो ही फर्स्ट आई थी। जहाँ 6 में मैं फर्स्ट आई थी, 7th के हाफ ईयरली तक भी आए थे, लेकिन उसके बाद गीता सिंह ही फर्स्ट आई। 8वीं में तो हम दोनों के बीच केवल एक नंबर का अंतर था। हम दोनों का बड़ा कंपटीशन रहता। वो गोल चेहरे, फिर से लाल गालों वाली मध्यम कद काठी और एक छोटी वाली लड़की कहाँ से आ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में समझदारी और बुद्धिमत्ता के दिए से जलते रहते। बेहद प्यारी आवाज में वो गाना भी गाती, और कौन सा गाना गाती थी, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर। पता नहीं उस समय गाना बहुत पॉपुलर था इसलिए वो गाती थी, या उसके जीवन में वाकई कोई प्रॉब्लम थी, ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन वो ये गाना बड़ा अच्छा गाती थी। अपने फर्स्ट आने का क्रम भंग होने के कारण मैं उससे भी ईर्ष्या करती। पता नहीं हम लड़कियों के स्वभाव में ये ईर्ष्या रूपी सर्प कहाँ से आ जाता है। क्यों नहीं हम सबके गुणों को दिल खोलकर अपना लेते। लेकिन शायद 12-13 साल की लड़कियों में ईर्ष्या स्वाभाविक होती है। उसकी भी बड़ी सी कोठी में एक बार हम लोग गए थे। धूप में आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया था, अभिजात खाना। वो उड़े उड़े से सपनों से तैरते बचपन के दिन। वो बड़ी ही सुसभ्य, कम बोलने वाली और शांत गंभीर लड़की थी। उसका बैग और किताबें बड़े कायदे से रहते, सब पर ब्राउन कवर चढ़े हुए और नेम स्लिप लगी हुई। और उसमें मोती जैसे अक्षरों से लिखा हुआ। और आठवीं करने के बाद जो उसका ट्रांसफर हुआ तो जीवन अरण्य में वो कहाँ खो गई कभी पता नहीं चला। पापा की ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मुझे बचपन की सहेलियाँ कभी दोबारा नहीं मिली। मुझे लगता है आज शायद कहीं वो भी डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर बन गई होगी। बहुत होशियार थी, बड़ी गंभीर थी, बड़ी सिंसेयर थी और उसके पापा मजिस्ट्रेट थे, तो मेरा ऐसा सोचना है कि ज़रूर वो UPSC में या PSC में चली गई होगी। फिर अचानक ही हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव नुमा शहर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में आ गए। शांत मध्यम वर्गीय शहर, वहाँ के बेस्ट गर्ल्स स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया। अक्सर हम ट्रांसफर होकर अगस्त के महीने में नए शहर पहुँचते थे जब धुआंधार पानी बरस रहा होता। हर शहर का अलग माहौल, अलग मौसम, अलग तरह का स्कूल और अलग तरह की लड़कियाँ। लेकिन इस बार टाइफाइड की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण मैं अक्टूबर में ही नए स्कूल में जा पाई थी, शहर का सबसे प्रसिद्ध गर्ल्स कॉलेज। वहाँ आठवीं तक की लड़कियाँ नीली फ्रॉक पहनती थी और नवीं से बड़ी लड़कियों के समान नीला कुर्ता, सफ़ेद सलवार, सफ़ेद मोज़े और काले जूते। बड़े कायदे से फोल्ड करके वी शेप बनाता हुआ कॉटन का वाइट दुपट्टा, जिसे दोनों कंधों पर सेफ्टी पिन से टक किया जाता। तो मैं 9th में थी तो मैं भी सलवार सूट पहन के जाती थी। गोरी, लंबी और भरे भरे शरीर की लड़कियां, शायद यहाँ की स्वस्थ जलवायु का ही असर था। यहाँ तो जाड़ों में कई लड़कियों के गाल गुलाबी हो जाते हैं। उनमें मुझे याद है गोरी, लंबी पतली, दुबली और बेहद एक्टिव शेफाली। उसकी मम्मी हमारे ही स्कूल में टीचर थी। वह अपनी लंबी चोटियों को फोल्ड करके लाल रिबन लगाती और एक चोटी आगे और एक पीछे पड़ी रहती। मैं हमेशा सोचती मैं भी उसके जैसी लंबी पतली और स्मार्ट क्यों नहीं हूँ। मेरा छोटा कद और टाइफाइड की वजह से बॉय कट कटे बाल मुझ में हीनता सी भर देते। वो हाई स्कूल की प्रिफेक्ट थी और पता नहीं स्कूल का क्या क्या काम करती रहती। अरे, एक और लड़की जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसे तो मैं भूल ही गई। उसी पुराने वाले स्कूल की जो छोटा सा शहर था वहाँ की लड़की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उसी छोटे से शहर में वो हमारी ही कॉलोनी में रहती थी, मुझसे एक साल सीनियर, नाम वंदना, चार भाइयों की सबसे छोटी बहन। अकेली होने पर भी वो उतनी लाडली नहीं थी जितनी मैं। उसकी माँ किसी गांव में थी, गांव से थी, अतः घर भी काफी फुअरता से रखती थी। उनका घर बहुत ही शैबी सा रहता था। लंबी चौड़े कंधों और माथे पर लाल बिंदी लगाई उसकी माँ। हमारी अभी जाते पढ़ी लिखी माँ और उतना ही सुसज्जित घर उसे बड़ा आकर्षक लगता। अक्सर वो मेरी मम्मी के पास बैठी रहती और उनसे कभी सिलाई, कभी बुनाई, कभी कढ़ाई का कोई स्टिच सीखती रहती। उसे लगता मुझे भी ऐसे स्मार्ट होना चाहिए। लंबी चौड़े कंधों और भरे भरे बदन वाली वंदना का चेहरा भी बहुत प्यारा था। गेहूं का सुनहला रंग, बड़ी बड़ी आँखें, तीखी सुडौल नाक और दाढ़ी में दंत पंक्ति, सफेद ब्लाउज, मैरून स्कर्ट जो कायदे से प्रेस किए हुए होते थे, सफेद झक मोजे और पॉलिश के जूते पहने वो रोज मुझे लेने आती और फिर हम दोनों स्कूल बस से स्कूल जाते, जहां मैं छोटे कद और दुबली कायकी के कारण कायकी थी, उसके भरे भरे शरीर और आकर्षक चेहरे के कारण बहुत से लड़के उसे एक टक देखते रहते। लड़के उसके प्रति बहुत आकर्षित होते थे, जबकि मुश्किल से आई थिंक वो 9th में थी। बचपन में या किशोरावस्था के प्राथमिक क्षणों में ये बात भी ईर्ष्या का कारण बन जाती है। वो बड़ी हाजिर जवाब भी थी और बड़े स्वर में गाना गाती थी। और कौन सा गाना गाती थी, उस समय वो फिल्म आई थी ना जंजीर, उसका बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। कई लोग उसको हेमा मालिनी भी कहते। वहां से ट्रांसफर के बाद वो मुझे जीवन में फिर कभी नहीं मिली। एक बार बहुत साल बाद, जब शायद मैं पढ़ाई पूरी करके ट्रेनिंग पीरियड में थी, उसकी मम्मी मुझे लखनऊ के इंस्पेक्शन हाउस में मिली थी। अरे आंटी, वंदना कहाँ है आजकल? बेटा उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया है। अच्छा आंटी, और उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करके गोल्ड मेडल अर्जित किया है। ओह बाबा रे, अच्छा। और मैं आश्चर्य से भर गई थी। अब वो वहाँ यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर है। ओह, मेरा मन अभिमान और ईर्ष्या दोनों से भर गया। एक परिवार वहाँ और था जो उस वर्ग से था जिसको हम लोग हरिजन कहते हैं। तो उनका सिलेक्शन क्योंकि आउट ऑफ टर्न हो जाता है, तो उसके पापा अच्छी पोस्ट पे थे, एक आध साल सीनियर थी वो दीदी हमसे। बिल्कुल गहरा रंग और नाक उनकी काफ़ी ऐसे वैसी थी, थोड़ी चौड़ी सी नाक और दो चोटियाँ बनाती थी, लंबी सी थी थोड़ी चौड़ी सी, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा था, स्वभाव बहुत अच्छा था। तो वो बायोलॉजी पढ़ती थी, तो मुझे बहुत सी बातें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताती थी। और वो लोग भी कई बहनें थे, तो उसमें एक जो सबसे बड़ी वाली दीदी थी, उनकी 12th करके शादी हो गई थी, तो उनकी शादी के 3 महीने बाद वो पीहर आई थी। और क्यों आई थी? क्योंकि सबसे छोटी उनकी जो मम्मा थी उनके बेबी हुआ था। सोचिए, सबसे बड़ी बिटिया की शादी हो गई थी और उसके बाद मम्मा को बीबी हुआ और मम्मी की केयर करने के लिए वो घर आई थी। तो देखिए कितने कितने तरह के और कितने मज़ेदार लोग हमको इस जीवन यात्रा में मिलते हैं, बस उसी की कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। इसके बाद तो कानपुर लखनऊ के कॉलेजों में कितनी ही लड़कियाँ मिली, गोरी भरे भरे गालों वाली सुंदर अमिता, जिसकी आंख में काला तिल था, सुस्मिता सांवले सुनहले रंग और घने काले बालों वाली जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, मोटी मोटी दो चोटियों और गोरे गालों चौड़े चेहरे वाली समिष्ठा, और लंबी पतली गोरी विनीता जिसकी 12th बोर्ड में पूरे यूपी में 8th रैंक आई थी। कितनी ही लड़कियां थी, लेकिन ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया जीवन में। एक बार मुझे विनीता दोबारा मिली थी, वो 12th के बाद CPMT का एंट्रेंस एग्जाम देने लखनऊ आई थी, तो वहां मिली थी मुझे। उसका BHU में मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। आज जरूर वो कहीं ना कहीं बहुत उच्च पदस्थ डॉक्टर होगी। कॉलेज में क्लास की वो लंबी स्मार्ट सी और कटे बालों वाली लड़की अनु, जो एग्ज़ाम के एक मिनट पहले तक पढ़ती रहती थी। मोटी भद्दी और मोटे चश्मे वाली बिल्किस, जो एग्ज़ाम में अपने हाथ से डेस्क हिला हिला कर नकल करवाने को कहती थी। इतनी ज़ोर से डेस्क हिलाती थी कि लिखना मुश्किल हो जाता था। घरेलू कुछ हेल्दी सी प्रतिभा और बेहद एक्टिव अनिका ऑलराउंडर, गोल चेहरे गुलाबी गालों और चश्मा लगी भूरी आंखों वाली कनिका, जिस प्रतियोगिता में पार्ट लेती उसी में फर्स्ट आती। इतनी सारी लड़कियां हैं उसमें, कनिका ने भी बहुत प्रभावित किया। पढ़ने में वो जितनी होशियार थी, टीचर्स की बटरिंग करने में भी उतनी ही कुशल। टीचर्स को भी खूब मक्खन लगाती थी वो, हंस हंस के उनसे बातें करती थी, जो कि ये क्वालिटी हम लोग में नहीं थी, तो इसलिए लगता था कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसी कारण सेशनल्स में भी उसे बड़े अच्छे नंबर मिलते। बाद में पता चला कि उसने अपने ही बॉस से शादी कर ली थी और यूपीएससी के सीनियर ऑफिसर की वाइफ बन गई थी। हम दोनों में भी कंपटीशन रहता, कभी वो और कभी मैं क्लास में फर्स्ट आते। लेकिन जहाँ ना चाहते हुए भी मैंने पूरी ज़िंदगी जॉब करी, वो ब्राइट होते हुए भी हाउसवाइफ ही रही। उसके हस्बैंड के ट्रांसफ़र होते रहते थे, उसने कभी भी जॉब नहीं करी। बस ऐसे ही ना जाने कितने चेहरे यादों के धुंधले आसमान में दिखाई देते रहते हैं। लंबी पतली सांवली साउथ इंडियन श्रीदेवी, जो बहुत ही प्यारी थी, और रीता मल्होत्रा, लंबी पतली और बेहद स्टाइलिश और गोरी। वो स्कूटर चलाती, कार चलाती और कभी कभी बड़ी वाली सुमो भी चला के ले आती। बहुत ही मस्त बच्ची थी, लड़की थी, और उस समय तो लड़कियां सिर्फ साइकिल चलाती थी, वो भी बहुत कम, तो इसलिए वो स्कूटर चलाती थी, कार चलाती थी और बड़ी वाली गाड़ियां भी चला लेती थी। एकदम बिंदास और मस्त, डांस भी ऐसे इटलाकर करती, एकदम सेक्सी। काले घने बाल जिनकी वो दो चोटियां बनाती, छोटी छोटी आंखें, तीखी नाक और धवल दंत पंक्ति। मौसमी चटर्जी का ध्यान आता था उसके दांत देख के। पतले पतले होठों पर खेलती बेहद शोक हंसी। हम दोनों साइकिल से इकट्ठे घर जाते, लौटते समय कभी भुट्टा, कभी कटा हुआ खीरा और कभी अमरूद खाते हुए लौटते। वो बेहद मस्ती से साइकिल लहरा लहरा कर चलाती और चौराहे आने पर अपने लंबे पतले पैरों को जमीन पर टिका देती। कम हाइट होने के कारण मुझे हर बार साइकिल से नीचे उतरना पड़ता, तब मैं सोचती मैं भी रीता जैसी लंबी क्यों नहीं हूँ। अक्सर हमको खुद की में कमियाँ ही नज़र आती हैं, अपनी विशेषताएं तो बहुत कम दिखती हैं, अपने में कमियाँ दिखती हैं और हम हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। कोई और करे ना करे, खुद ही अपने को कंपेयर करते रहते हैं। और वो लाल गाल और बेहद सफ़ेद चेहरे वाली दीपशिखा, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और एक ही कॉलोनी में साथ में रहते थे लखनऊ में। वो कुमाइयों की ब्राह्मण परिवार की थी, इसलिए बिल्कुल अलग ही दिखती थी। काले बाल, काले घने लंबे बाल, गोरा रंग और श्वेत दंत पंक्ति, कुछ भरे भरे से शरीर वाली। उसके मिकाल एकदम लाल हो जाते थे जाड़ों में। अक्सर वो कॉलेज के फंक्शंस में एकदम लाल या एकदम ब्लैक साड़ी पहनकर जाती। आधी बाहों के ब्लाउज में उसकी सुडौल बाहें लपटे सी मारती। उसी से मैंने कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए एक पहाड़ी डांस सीखा था। और एक कॉलेज में लड़की और थी हमारे साथ में, उसका नाम था अफसाना। मुस्लिम लड़की थी लेकिन थोड़ी हेल्दी सी थी, बड़ी स्मार्ट सी और किसी बहुत रिच फैमिली से थी। तो इतनी मस्त थी उसकी, हर उसमें थर्ड डिवीज़न आती थी लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बहुत खुश रहती थी वो, बहुत स्मार्टली मस्त घूमती थी और अपने गॉगल्स भी वो ऊपर माथे पे चढ़ा के रखती थी। ऐसी एक और लड़की थी, वो भी हॉस्टल में रहती थी, उसका नाम था अनीता। तो हम लोग 2-3 साल कॉलेज में रहे और वो इतनी रिच थी, उसके फादर शायद उन लोग का बिजनेस था या जो भी था, कि उसने 3 साल एक भी अपना सूट कोई रिपीट नहीं किया, रोज़ नए सूट पहन के आती थी। जहाँ हम लोग अपने वही कपड़े जो हैं वो अपने जो 5-6 जोड़ी कपड़े थे उन्हीं को रिपीट करते रहते थे, और वो रोज़ एक नया सूट पहन के आती थी और हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता था उसको देख के कि उसके पास कैसे इतने सारे कपड़े हैं। और समय की सीढ़ियाँ पार करते करते कॉलेज भी हो गया तो ट्रेनिंग पीरियड में पहुँच गए। ट्रेनिंग पीरियड में लाल गालों वाली लड़की कामनी, जो मेरी बहुत प्यारी सहेली थी, जब वो हंसती या शर्माती उसका चेहरा लाल हो जाता। ना जाने मेरी ये सब सहेलियाँ अब कहाँ होंगी। अरे कॉलेज भी हो गया, ट्रेनिंग पीरियड भी हो गया, लेकिन बचपन की एक बहुत प्यारी सहेली को तो मैं भूल ही गई। एक बहुत ही मेरी प्यारी सी सहेली थी जिसका नाम था चीलू। चीलू जो थी वो एक पॉनीटेल बांधती थी, छोटे से थे हम लोग की फ्रेंडशिप थी जब हम लोग 4-5 साल के थे, और उसके बाल जो थे वो सामने से 7-8 कटे हुए थे, दुबली पतली छोटी सी बच्ची थी। सामने से कटे 7-8 बाल, एक पोनी और घर पर सिली नीली पीली फ्रॉक्स। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। हम दोनों घंटों गर्मी की दोपहर में उसके घर में खेलते, माँ बाप की अकेली संतान। और फिर हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया था कानपुर से। हाँ तो हम बात कर रहे थे चीलू की। तो चीलू से मेरी फ्रेंडशिप रही जब तक हम लोग 4th-5th में थे, फिर उसके बाद हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया। और फिर जब दोबारा मैं उससे मिली तो हम लोग 11th में पहुंच गए थे, वापस ट्रांसफर हुआ हमारा कानपुर, तब दोबारा मिले थे। दुबली पतली चीलू फूल कर गोलगप्पा हो गई थी, इतनी ज्यादा उसका वेट बढ़ गया था, एकदम बहुत हेल्दी, इतनी मोटी जैसे बेबी एलिफेंट, बहुत से लोग उसको बेबी एलिफेंट बोलते थे, लेकिन उतनी ही ताकतवर। गेहुआ रंग और शरीर के विपरीत एकदम भोला चेहरा, प्रीति गांगुली जैसा। अपने कटे हुए घुंघराले भूरे बालों की कभी वो 2 पोनीटेल बना लेती और कभी कान तक कटे बालों में लाल बैंड लगा लेती। हम दोनों साइकिल से साथ साथ स्कूल जाते। मेरी साइकिल गैरेज में रखी रहती थी, तो गैरेज के भारी लोहे के गेट को वो एक हाथ से ऐसे उठा देती जैसे कोई फूल हो। साइकिल पर हम दोनों की जोड़ी शायद मोटू पतलू की लगती होगी, लेकिन जैसा कि अक्सर देखा है जो लोग काफी मोटे होते हैं वो बहुत ही हिलेरियस होते हैं, बहुत मस्त होते हैं, तो चीलू भी बेहद मस्त स्वभाव की थी। वो ऐसे जोर से खिलखिलाकर हंसती कि उसका पूरा शरीर जोर जोर से हिलने लगता, और क्लास में सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे इसीलिए। बस ऐसी ही हंसती खिलखिलाती लड़कियों में एक चेहरा और दमक उठता है उसका। शायद नमिता नाम था उसका। मम्मी पापा मेरे लिए स्कूल कॉलेज तक जाने के लिए कोई ना कोई साथ ढूंढते रहते, और उसी खोज में मिली थी मुझे वो, मुझसे 1 साल सीनियर। चौड़ा चेहरा, गोरा रंग और कटे हुए घुंघराले बाल, लंबी और चौड़े कंधों वाली, गठा हुआ शरीर, एक अजीब से कशिश थी उसके चेहरे में। अक्सर वो जाते समय तो मेरे साथ जाती, लेकिन लौटते समय थोड़ी दूर आकर एक पतली सड़क पर साइकिल मोड़ लेती, अंदर अंदर के रास्ते में जो मेन रोड नहीं थी, वहाँ उसे 4-5 साल बड़ा शायद उसका पहला प्यार उसका इंतज़ार कर रहा होता। वो दोनों साइकिल से साथ साथ चलते और मैं उनके पीछे पीछे निग्लेक्टेड सी। लेकिन ना उसकी ना अपनी मम्मी से मुझे उसके तथाकथित बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की हिम्मत हो पाई थी। उस समय बहुत ही रेयर था लड़कियां, बहुत पूरी क्लास में एक आध कोई लड़की होती थी जिसका बॉयफ्रेंड होता था, तो मम्मी लोग को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ऐसी ना जाने कितनी झूमती इटलाती लड़कियां मेरी यादों की झील में कैद हैं, जिनके ऊपर समय की हरी काई जम गई है। लेकिन अभी भी कभी कभी उस झील में से कोई पंछी उड़कर आता है और मेरे कानों में एक मीठी सरसराहट छोड़कर चला जाता है। तो बस फ्रेंड्स, ये थी मेरी कहानी वो लड़की। बचपन से लेकर और कॉलेज आने तक, ट्रेनिंग पीरियड तक, मुझे जो भी लड़कियां मिली, क्लास में तो बहुत सी लड़कियां होती हैं, कॉलोनी में बहुत लड़कियां होती हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्तित्व होता है जो आपको बहुत प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं से आप उनके जैसा बनना चाहते हो। तो बस उन्हीं सब लड़कियों को मिला के एक कहानी सी बन गई जिसका नाम है वो लड़की। आशा है इसको सुन के आपको भी अपने बचपन की बहुत सारी सहेलियाँ याद आ गई होंगी, और अगर आपको अपने बचपन की कोई प्यारी सहेली याद आ रही हो, जिसको आपको याद आ रही हो और आपका उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया हो और कोई प्यारी सी घटना हो, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं उसको, आपकी कहानी को भी जो है वो अपने चैनल में ज़रूर सुनाऊँगी मालती के फूल में। चलिए, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय, सी यू।